भाई क्या जरूरत है अभी निकलने की, सुबह आराम से निकलते हैं ना। ये अन्वय था जो अक्षय के अचानक वापसी के फैसले से खुश नहीं था। अक्षय जो बैग पैक कर रहा था उसने सामान रखते हुए मशगूल दिखाते हुए गंभीरता से जवाब दिया। घर से मम्मी का फोन पर फोन आ रहा है, शादी के लिए आए थे और अब शादी हो गई तो वापस आने को कह रही हैं, फिर कल सुबह मुझे हॉस्पिटल भी जाना है तो अभी निकलना ही ठीक होगा। बस एक रात की बात है भाई, अभी तो भाभी के साथ आपको ठीक से वक्त बिताने का भी मौका नहीं मिला है। इस वक्त उनके घर में जितने मेहमान हैं और जितना काम फैलाए उन्हें वक्त मिलेगा भी नहीं, और मिलेगा भी तब भी उनका संकोची और शर्मीला स्वभाव उन्हें मेरे साथ वक्त बिताने की अनुमति नहीं देगा। वो चंद पल तो मेरे आसपास ठहर नहीं पाती, वक्त बिताने को कैसे राजी होंगी। बेहतर है कि हम घर चलें, वैसे भी 3 महीने में शादी हो जाएगी, फिर वक्त ही वक्त होगा हमारे पास। अभी उन्हें इस घर की बेटी होने का फ़र्ज निभाना है और मुझे एक डॉक्टर होने का। सुबह एक ऑपरेशन है और उससे पहले मेरा दिल्ली पहुँचना बहुत ज़रूरी है। अक्षय ने बेहद संजीदगी से सारी स्थिति उसे समझाई। जैसे ही वो चुप हुआ दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अक्षय और अन्वय दोनों ने चौंकते हुए उस तरफ देखा। सामने पलके झुकाए आहाना खड़ी थी जिसके हाथ में कुछ सामान भी था। अरे भाभी आप वहाँ क्यों खड़ी हैं, अंदर आइए ना, आपका ही घर है, अन्वय ने मस्ती भरे अंदाज में कहा। आहाना 2 कदम अंदर आई और हाथ में पकड़े सामान की ओर इशारा करते हुए बोली, ये सब माँ ने दिया है साथ ले जाने के लिए, बैग में तो ये नहीं आएगा, अन्वय को दे दीजिए वो कार में रख देगा, अक्षय ने सहज भाव से कहा और अन्वय की ओर निगाहें घुमाई। अन्वय ने उसका इशारा समझते हुए सर हिलाया और आगे बढ़कर उससे सारा सामान ले लिया। लाइए मुझे दीजिए भाभी, मैं कार में रखाता हूँ, आहाना ने भी बिना आनाकानी के सामानों से पकड़ा दिया। अन्वय कमरे से बाहर निकल गया और जाते जाते अक्षय को आंखों से कुछ इशारा भी कर गया था। आहाना अब भी वहीं खड़ी थी, अपने हाथ की उंगलियों को आपस में उलझाती हुई, पलके झुकाए और लरचते लबों को भींचे हुए। आहाना नाराज है मुझसे, अक्षय ने कुछ पल ठहरने के बाद गंभीर स्वर में सवाल किया। आहाना ने चौंकते हुए पलके उठाई और आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगी, मानो उसके इस सवाल के पीछे की वजह जानने की कोशिश कर रही हो। आपने आज ठहरने का निवेदन किया था पर मैं आपके उस आग्रह को ठुकरा कर जा रहा हूँ, तो नाराज होंगी ना आप मुझसे, अक्षय ने अपने मन के शक को उसके सामने व्यक्त कर दिया। पहले तो आहाना चौंक गई, फिर तुरंत ही उसने इनकार में सर हिला दिया। नहीं हम तो आपसे नाराज नहीं, क्यों आपको मेरा आपके निवेदन को ठुकरा कर जाना बुरा नहीं लगा, या आप मुझ पर इतना भी हक नहीं समझती कि नाराज हो सके मुझसे, या शायद आपको मेरे ठहरने या जाने से फर्क ही नहीं पड़ता। अक्षय का सवाल सुनकर आहाना पल भर को ठिठक गई, अचरज भरी निगाहों से उसे देखने लगी, फिर निगाहें झुकाते हुए धीमे स्वर में बोली, आपने सुबह जाने की बात कही थी और रात तक रुक गए, हमारा निवेदन तो स्वीकार कर लिया आपने, और अगर आपको काम नहीं होता तो शायद रात भर भी ठहर जाते। हम समझते हैं आपका जाना जरूरी है, आपका फर्ज आपको पुकार रहा है, जिससे मुंह मोड़ना ठीक नहीं, इसीलिए हम आपसे नाराज नहीं हैं। आहाना का जवाब अक्षय के लबों पर मुस्कान बनकर बिखर गया। आहाना आज तो जा रहे हैं, अब इस घर में दोबारा उस दिन कदम रखेंगे जब आपको अपना बनाकर यहाँ से ले जाने आएंगे, इंतजार कीजिएगा हमारा, करेंगी ना। अक्षय के शब्द आहाना के मन के तार छेड़ गए, दिल अलग अंदाज में धड़का था, अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी थी, शोर मचाती धड़कने जैसे अक्षय के सवाल का जवाब देने को बेताब थी, और लब लरचते में मानो कुछ कहने को कसम सा उठे थे। आलम कुछ यूं था कि अक्षय उसके जवाब के इंतजार में खड़ा था, जबकि आहाना ना तो निगाहें उठाकर उसे देखने की हिम्मत कर सकी और ना ही लबों से एक शब्द भी बाहर आया। उसका जी किया कि भाग जाए यहाँ से, पर कदमों ने भी जैसे उसका साथ छोड़ दिया था। उसकी झुकी पलकें थरथराई और वो छुई मुई के पौधे जैसे खुद में ही सिमट गई। कुछ ना कहकर भी वो बहुत कुछ कह गई थी, जिसे समझते हुए अक्षय के लबों पर सजी मुस्कान और गहरी हो गई। जाइए आहाना, आपसे अब यहाँ खड़ा नहीं हुआ जाएगा। आहाना अब पल भर यहाँ न ठहरी और पलक झपकते ही कमरे से बाहर निकल गई। अक्षय उसकी हड़बड़ी देखकर मन ही मन हंस पड़ा। दूसरी तरफ अन्वय दोनों हाथों में सामान पकड़े कार तक पहुँच तो गया था, पर अब कार अनलॉक करके सामान रखने में उसे खासी परेशानी हो रही थी। वो आसपास नजरें घुमाकर एक साफ सुथरी जगह ढूंढने लगा जहाँ सामान रख सके, तभी वहां अंतरा पहुंच गई। लाओ मैं पकड़ लूं, आवाज सुनकर अन्वय ने चौंकते हुए निगाहें घुमाई। पहले तो वो अंतरा को वहां देखकर और खुद से हेल्प ऑफर करते देखकर विश्वास ही नहीं कर सका, पर जब अंतरा ने भौं से कूदते हुए उसे घूरा और हाथ आगे बढ़ाए तो उसे इस हकीकत पर विश्वास हो गया। थैंक यू, अन्वय ने सारा सामान अंदर रखते के बाद अंतरा का शुक्रिया किया। बदले में अंतरा ने हाथ झाड़ते हुए बेफिक्री से जवाब दिया, यू आर मोस्ट वेलकम। अन्वय ने सर हिलाया और वापस अंदर जाने को पलटा ही था कि पीछे से अंतरा ने उसे पुकारा। सुनो। सुनाओ क्या सुनाना है, अन्वय ने पुलटकर शरारत भरे लहजे में कहा। अंतरा ने आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरा और खींचते हुए बोली, कुछ बात करनी है मुझे तुमसे। अहो भाग्य हमारे, कहिए क्या बात करनी है आपको हमसे। अन्वय ने एक बार फिर उसे छेड़ा और चंचल मुस्कान लबों पर बिखर गई। उसकी मुस्कान देखकर अंतरा का दिल सुलग उठा। इतनी नौटंकी करके मुझे चिढ़ाते क्यों हो तुम? सीधे इंसानों जैसे बात नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकता हूँ, पर तब जब सामने एक नॉर्मल इंसान खड़ा हो। फिलहाल तो मेरे सामने एक नकछड़ी बिल्ली खड़ी है जो जरा जरा सी बात पर ततैया बन जाती है और खिसियानी बिल्ली जैसे तीखे शब्दों के पंजे मारने से भी बाज नहीं आती। अन्वय ने बेफिक्री से जवाब दिया और एक बार फिर दिल जलाने वाली मुस्कान से अंतरा का खून खौला दिया। अब तक अपने गुस्से को जब्त करती अंतरा छल्लाते हुए उस पर चढ़ गई। सुनो बे, अब बहुत ज्यादा हुई रहा है तुम्हारा, बता दे रहे, हमारे साथ ज्यादा बकैती नहीं किया करो, नहीं तो सब लिहाज भूल जाएंगे और हपक के एक कंटाप धरेंगे कि सारी रंगबाजी और बकैती धरी की धरी रह जाएगी। उफ, आ गई ना अपने पर, जरा देर भी तुमसे शांत नहीं रहा जाता। तीखी लाल मिर्ची जैसे तेवर लिए घूमती हो और जरा सी बात पर सुलग उठती हो। खैर छोड़ो ये बातें, तुम तो सुधरने से रही तो कुछ कहने का कोई फायदा नहीं। बताओ किस काम से आई थी? अन्वय की बातों से अंतरा कुछ ज्यादा ही भड़की हुई थी। कुछ देर तो सुलगती आंखों से उसे घूरती रही, फिर चेहरा फेरते हुए कुछ सांसें अंदर बाहर की, अपने गुस्से को संयमित किया। उसके बाद वापस उसकी ओर पलटते हुए शांत स्वर में बोली, आज जाना जरूरी है क्या तुम्हारा? जीजू को रात भर रुकने के लिए मना नहीं सकते तुम? और अगर मना लूं तो उन्हें यहाँ एक रात रुकवा कर क्या करने का इरादा है तुम्हारा? सवाल के बदले अन्वय ने उस पर सवाल दागा और भौं उछालते हुए उसे देखने लगा। मेरा तो कुछ इरादा नहीं, पर इसके बाद जीजू और जीजी की मुलाकात सीधे शादी वाले दिन ही होगी। कानपुर और दिल्ली इतने दूर दूर है कि शादी की शॉपिंग या किसी और बहाने मिलना भी मुमकिन नहीं। तो अगर जीजू आज रात यहाँ रुक जाते तो जीजी के साथ उन्हें थोड़ा वक्त मिल जाता। तुम्हें वाकई लगता है कि जिस घर में आज नई बहू ने कदम रखा है, जहाँ मेहमानों का मेला और काम का ढेर लगा है, वहाँ उस घर की बड़ी बेटी को अपने होने वाले पति के साथ अकेले में कुछ वक्त बिताने का मौका मिलेगा? और सबसे अहम बात, क्या भाभी मानेंगी इसके लिए? हमारी जीजी तो बौरा गई है, कुछ समझती ही नहीं है। जो मौका छोड़ा तो फिर सीधे ब्याह मंडप में दोबारा मुलाकात होगी। अंतरा ने झल्लाते हुए अपने बालों को मुट्ठी में बीचा। उसके व्यवहार से साफ जाहिर था कि उसका कितना दिल है दोनों को मिलवाने का, पर निराश और बेबस लाचार।
इट्स ओके, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। भाभी और भाई एक दो बार मिल तो लिए हैं, वरना अरेंज मैरिज में तो अभी भी ज्यादातर ऐसा होता है कि जिनकी शादी होने वाली होती है वो आमने सामने एक दूसरे को देखने को भी तरस जाते हैं। फिर फोन तो है ही, बात करेंगे ही, और 3 महीने बाद शादी हो जाएगी, तब तो मौके ही मौके होंगे उनके पास। अन्वय ने जरा नरमी से उससे बात की। अंतरा उसकी बात से सहमत तो नहीं थी, पर और कोई चारा भी नहीं था, सो मन महसूस कर मान गई। अंतरा, मुझसे चिढ़ना छोड़ नहीं सकती तुम, इतना भी बुरा नहीं हूँ यार, और दोस्त तो बहुत अच्छा हूँ, ट्रस्ट मी। अन्वय ने बेहद संजीदगी से कुछ पल ठहरने के बाद ये बात कही थी। अंतरा ने कुछ पल सोचा, फिर सर हिला दिया। ठीक है, पर याद रहे कि तुम जीजू के भाई हो तो छेड़छाड़, मजाक और शरारतें भरपूर होंगी, उसमें कोई रियायत नहीं मिलेगी तुम्हें। तो मैं कौन सा तुम्हें यूं ही जाने दूंगा, तुम भी मेरे भाई की साली हो, वो भी इकलौती, हमारा तो रिश्ता ही हंसी मजाक नोकझोंक भरी छेड़छाड़ का है। अन्वय ने उसी के अंदाज में बात कही और दोनों एक दूसरे को देखते हुए हंस पड़े। अन्वय और अक्षय निकलने को तैयार थे, सब बड़ों के पैर छूकर उन्होंने निकलने की अनुमति ली। सबने उन्हें आशीर्वाद संग सलामी देकर विदा किया। वो द्रीशांत और बाकी भाइयों के गले लगे। अन्वय निशांत के पास चला आया और शरारती लहजे में बोला, चैंप, अपनी जीजी के साथ अच्छे से वक्त बिता लो, अगली बार आएंगे तो उन्हें हम अपने साथ ले जाएंगे। निशांत ने उसकी बात सुनकर नाराजगी से मुंह फुला लिया, जिस पर अन्वय हंस पड़ा और उसे भी अपने गले से लगा लिया। अक्षय ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हुए उसके बालों को सहलाकर उसे प्यार किया। जीजू, इस बार की खातिरदारी याद रखिएगा, अगली बार जब आएंगे तो पहले से तैयार होकर आइएगा, अंतरा ने उसके गले से लगते हुए शरारत से कहा। उसका इशारा समझते हुए अक्षय बस मुस्कुरा कर रह गया। अन्वय और अंतरा ने भी एक दूसरे को अलविदा कहा। अन्वय तो आहाना से भी मिला, पर अक्षय बस उसे नज़र भर देखकर कार में बैठ गया। देखते देखते कार आगे बढ़ गई। पीछे खड़ी आहाना तब तक कार देखती रही जब तक कार उसकी आंखों से ओझल ना हो गई। कार ड्राइव करते अक्षय ने भी रियर व्यू मिरर में दिखती आहाना को तब तक निहारा जब तक कार दूसरी गली में ना मुड़ गई। इस बार की ये मुलाकात दोनों के दिलों को कुछ अलग एहसासों और अनुभूतियों से भर गई थी।